आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले जो पिछली बार हमने प्रश्न दिए थे उसका उत्तर डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। कृपया आप सभी लोग अपना आंसर पेपर निकाल लें, पहला प्रश्न, और उसमें आप मार्क करते जाएं सही है कि गलत है, और फिर बाद में ये हम वापस ले लेंगे आपसे आंसर शीट्स। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए इच्छुक व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। पहला, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अतः अंततः मैं अपने मात्र अपनी बुद्धि से सब कुछ जान सकता हूं। दूसरा, मैं तुच्छ हूं, अतः परम सत्य को परम सत्य की कृपा से ही जान सकता हूं। तीसरा, अर्जुन के समान श्री कृष्ण का भक्त ही भगवद गीता को समझ सकता है। कौन सा सही है इसमें से? ओके, सेकेंड एंड थर्ड। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आवश्यक है। पहला, उसके लिए जिसमें इसकी रुचि है। दूसरा, सभी मनुष्यों के लिए। तीसरा, वृद्ध जनों के लिए ही। चौथा, मात्र उनके लिए जो भौतिक जगत में निराश हैं। सभी के लिए। थर्ड, ईश्वर। पहला, यह संपूर्ण प्रकृति ही ईश्वर है। दूसरा, निराकार ब्रह्म ईश्वर है। तीसरा, ईश्वर सच्चिदानंद में रूप वाला है। चौथा, श्री कृष्ण ईश्वर है। सी एंड डी दोनों, तीसरा और चौथा, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। चौथा, भौतिक प्रकृति। पहला, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। दूसरा, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। एक मिनट। तीसरा, यह भगवान की एक शक्ति है। चौथा, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। बी एंड सी। पांचवा, जीव यानी आत्मा। पहला, भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। दूसरा, मुक्ति प्राप्त होने पर भगवान में लीन हो जाता है। तीसरा, सदैव भगवान पर आश्रित रहता है। चौथा, भौतिक तत्वों से उत्पन्न होता है। पांचवा, भगवान का नित्य दास है। पहला यानी भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। तीसरा यानी सदैव भगवान पर आश्रित रहता है। और लास्ट, भगवान का नित्य दास है। तीन। छठा प्रश्न, मनुष्य। पहला ऑप्शन, बद्ध अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है। दूसरा, अगली योनि में मनुष्य ही बनता है। तीसरा, मनुष्य को भावी योनि प्रकृति द्वारा भगवान के आदेशानुसार मनुष्य के कर्म एवं इच्छाओं के आधार पर प्रदान की जाती है। चौथा, कोई ना कोई भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है। और पहला और तीसरा और चौथा कोई ना कोई भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ता है। जो भी नहीं, भगवत धाम जा सकता है, कोई भौतिक शरीर धारण ना करे, आध्यात्मिक जगत जा सकता है। इसलिए पहला और तीसरा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम इस शरीर बंधन से निकल नहीं सकते, बाबा जन्म लेना ही पड़ेगा इस भौतिक जगत में, ऐसा नहीं है। वास्तव में हमारा लक्ष्य है कि भौतिक शरीर नहीं लेना पड़े, भगवत धाम जाए। सातवां, वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। पहला वेद व्यास, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा श्री कृष्ण। वेद व्यास मूल स्रोत श्री कृष्ण है, व्यास देव जी ने उसको संकलित किया है, लिखित रूप दिया है, विस्तार किया है, लेकिन ओरिजिनली ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है, ये उनका। आठ, वैदिक ज्ञान में समाविष्ट हैं ए, पुराण, रामायण, पंचरात्रिकी, वेदांत सूत्र। सबके सब चार, पुराण, रामायण, पंचरात्रिकी, वेदांत सूत्र, ऑल द फोर। नौवा, गुरु की आधारभूत योग्यता है। पहला, संस्कृत का प्रखंड पंडित होना। दूसरा, जादुई शक्तियां दिखाने वाला। तीसरा, बहुत सारे शिष्यों द्वारा पूजित। चौथा, अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त। चौथा और पांचवा। दस, आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक चेतना। पहला, मैं कृष्ण का दास हूं। दूसरा, आत्मा ही परमात्मा है। तीसरा, मैं इस जगत का भोक्ता हूं। पहला और दूसरा, आत्मा ही परमात्मा है, केवल पहला, यानी मैं कृष्ण का दास हूं। आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है परमात्मा, तभी तो हम दास बन सकते हैं। अगर हम भी भगवान हैं तो फिर कौन किसका दास बनेगा? आत्म साक्षात्कार के लिए पहला सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ना होगा, दूसरा कर्म के फलों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तीसरा भक्तों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना होगा, चौथा हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित श्रवण एवं कीर्तन करना होगा, पांच ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना होगा, छठा गुरु की शरणागति लेनी होगी। बी सी डी और एफ, दूसरा तीसरा चौथा और छठा। फिर अध्याय एक के ऊपर जो प्रश्न थे उसमें से पहला अर्जुन के युद्ध न करने के तीन मुख्य कारणों को संक्षेप में बताइए, तो ये सब आप लोग जो लिखे हैं उत्तर ये रखिए ऐसे, बाद में हम लोग इसको ले लेंगे आपसे। तो कौन कौन से अर्जुन के तीन मुख्य कारण थे युद्ध न करने के, कृपया आप हाँ बताइए, एक बताइए। क्यों नहीं मिलने वाली थी? साम्राज्य का भोग नहीं कर सकेगा। ओके, एक कारण। दूसरा कारण
समाज में स्त्री का पिता एवं सज्जनों की मृत्यु द्वारा कारण यह रक्षण कौन?
दूसरा कारण कि वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी हाँ, और ये धर्म के विरुद्ध होगा। ओके, और तीसरा
स्वजनों को मारने से पाप होता है और नरक
जाना पड़ता है। स्वजनों को मारने से ही पाप होता है, बाकी लोगों को मारने से पाप नहीं होता? आतताइयों को मारने से पाप होता है? फंस गए। पहला कारण था कि स्वजनों के प्रति लगाव, कि स्वजन है मैं कैसे, ये मेरे अपने हैं स्वजन, इसलिए लगाव उनके प्रति कि मैं उनको कैसे मार सकता हूं, ये मेरे अपने हैं लगाव। दूसरा था कि अगर सब मर जाएंगे तो फिर मैं साम्राज्य का भोग किसके साथ करूंगा। और तीसरा प्रमुख कारण था अधर्म, कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कोई सब बड़े मर जाएंगे और फिर पूरा समाज नरक की तरफ जाएगा। ये तीन कारण। दूसरा वर्ण संकर प्रजा से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पन्न होने के कारण एवं इससे होने वाली सामाजिक दुष्प्रभावों को संक्षेप में बताइए। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जब समाज में अनियंत्रित स्त्री पुरुष को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म के विरुद्ध काम वासना में लिप्त होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रजा उत्पन्न होती है, बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो वर्ण संकर, यानी कि वो वर्णाश्रम धर्म के नीति नियमों को पालन करने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए वो पिंडदान इत्यादि कोई भी क्रिया, कोई भी धर्म अनुशीलन करने में उनकी रुचि नहीं होती है, जिस वजह से हाँ जवाबदारी नहीं होती, बेजिम्मेदार, केवल खाओ पियो मौज करो बस, और इसकी वजह से धीरे धीरे पूरा समाज अधोगति की तरफ जाता है। तीसरा गोविंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस संदर्भ में आत्मा की संतुष्टि के सूत्र को संक्षिप्त में बताइए। कौन कौन लिखे हैं? हाँ जी, गोविंद मतलब गो मतलब इंद्रियां या गाय, जो इंद्रियों और गायों को संतुष्टि प्रदान करता है उसे गोविंद कहते हैं, ये गोविंद का मूलिक शाब्दिक अर्थ है। तो आत्मा की संतुष्टि के सूत्र में इस संबंध में क्या हम समझते हैं कि गोविंद कैसे इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, कैसे हमें संतुष्ट करते हैं, क्या फार्मूला है उसका? हाँ, जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो वास्तव में हम स्वाभाविक रूप से जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जीव की वो संतुष्ट होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं कि भगवान का काम है मेरी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करे, भगवान का काम है मुझे ये दे मुझे ये दे, जो मेरी भौतिक शरीर की इंद्रियां हैं उसके लिए संतुष्टि करे। लेकिन वैसे उस प्रकार से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम जो आत्मा है जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं वो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकती, भगवान को अपनी भौतिक इंद्रियों की सेवा में लगा करके हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान के दास हैं ना कि भगवान हमारे दास। तो इसलिए जब हम अपने को भगवान की दिव्य इंद्रियों की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी दिव्य इंद्रियां संतुष्ट होती हैं स्वतः, जैसे पेट में खाना देने से अपने आप शरीर के सभी अंगों को पोषण मिलता है, जैसे पेड़ की तने जड़ में पानी डालने से सभी शाखाओं को फलों को अपने आप पानी मिलता है, तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब आत्मा यानी हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये नियम है जो अर्जुन नहीं समझ रहे थे। अर्जुन सोच रहे थे गोविंद आपका काम है कि जो मैं चाहता हूँ, मेरी इंद्रियां जो चाहती हैं वैसा आप करो, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो आप मुझको युद्ध क्यों करने को बोलते हैं। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जब वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तभी अर्जुन वास्तव में संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं। हर व्यक्ति, अर्जुन, हम सब। चौथा, भय का मूल कारण क्या है?
हाँ जी,
एक्चुअली हमने एक स्पेसिफिक रेफरेंस दिया है फर्स्ट चैप्टर 30th श्लोक, तो सब आंसर मिलते जुलते हैं, हिंट कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली उस पर्पट में, इसलिए हमने रेफरेंस दिया था आपको कि ये श्लोक जाकर के जब आप पढ़ेंगे इसका तात्पर्य, तो उसके तात्पर्य में इसका स्पेसिफिक आंसर दिया है जो हम यहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात्। ये भागवतम का श्लोक है जिसके अनुसार भय का कारण है कि हम जो आत्मा हैं उसने अपने को असत्य, अनित्य चीज से संबंधित कर लिया है, यानी शरीर से संबंधित कर लिया है। भ्रमवश हम इस समय ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और यही सभी भय का कारण है, क्योंकि अमर हैं हम आत्मा, लेकिन जब अपने को शरीर मान लिए तो शरीर तो अमर नहीं है, शरीर तो नश्वर है, तो फिर भय आ गया मृत्यु का, क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया है, शरीर से बिल्कुल चिपक गए हैं, संबंधित हो गए हैं बिल्कुल, शरीर में बीमारी और दुख होते हैं इसलिए हमें भी वो दुख लगते हैं, वास्तव में आत्मा को कोई बीमारी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अपने को शरीर संबंधित कर रखा है, हम सोच रहे हैं यही शरीर, यही मैं हूं, इसलिए शरीर को बीमारी होती है तो वहां लगता है कि मुझे बीमारी हो गई। तो इस तरीके से द्वितीय अभिविनेशता, हमने अपने को दूसरी किसी प्रकृति में एब्जॉर्ब कर लिया है जो हम नहीं है, ऐसी किसी धारणा में अपने को डुबो दिया है, ये भय का मूल कारण है। पांचवा, युद्ध न करने के अर्जुन के कारण सामान्य नैतिक दृष्टि से सही होते हुए भी अंततः क्यों गलत थे? हाँ जी, यस। तो परम नीति, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी मोरालिटी का स्तर क्या है? वो है भगवान की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि उनसे बड़ा मोरलिस्ट कोई नहीं हो सकता। धर्म, धर्म की जो परिभाषा देने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, वो है भगवान। तो जब भगवान कह रहे हैं तो आज तो स्पष्ट है कि समाज के लिए, हर के लिए सबसे लाभकारी चीज, सबसे नैतिक चीज है जो भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान केवल एक परिवार के संबंध में नहीं देख रहे हैं, भगवान पूरी सृष्टि के संबंध में देख रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है, जो जीव अपनी छोटी बुद्धि से नहीं समझ सकता। तो इसलिए नैतिकता का पालन हम करते हैं, लेकिन यदि वो नैतिकता भगवान के आदेश को पालन करने में आड़े आए तो फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान की बात को मानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये उत्तर हैं। कार्यक्रम के बाद में आप टेबल पर अपने उत्तर ये सब जमा कर दीजिए, अपना नाम लिख करके उसके ऊपर। तो आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। तो अभी तक हमने देखा कि अर्जुन ने अनेक अनेक तर्क दिए कि मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, और अंत में रोने लगे, हाथ से गांडीव नीचे रख दिया और भगवान से कहने लगे, कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयात् निश्चितम ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं श्री अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये फाइनली सब रीजन बताने के बाद ये अर्जुन ने भगवान से कहा कि अभी मैं अपनी कृपणता के कारण क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसमें पूरा कंफ्यूज हो गया, और इसीलिए अभी मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, बेस्ट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर आए कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि देखिए अर्जुन कह रहे हैं कि ये भौतिक, ये जो पृथ्वी है इसका साम्राज्य मिल जाए वो तो छोड़िए, अगर मुझे ये स्वर्गों का स्वर्गलोक भी मिल जाए, निष्कंटक राज्य करने को मिले, कोई मेरा द्वंदी ही नहीं हो, प्रतिद्वंदी कोई ना हो, तो भी मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। और जो मेरा दुख है, जो मेरे को सुखाया जा रहा है, वो दुख अभी दूर नहीं हो सकता। चाहे मुझे पृथ्वी का साम्राज्य मिल जाए, चाहे देवताओं का साम्राज्य मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो भी ये जो मेरा कष्ट है ये दूर नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण, अभी मैं आपकी शरण ले रहा हूं क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। तो इन दो श्लोकों में हमें व्यक्त होती है, पता लगता है शिष्य की योग्यता, जिसके बारे में संक्षिप्त में हमने चर्चा की थी चार दिनों के कार्यक्रम में। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए वो हमें यहां पर अर्जुन से जानने को मिलती है कि अर्जुन जैसी चेतना, अर्जुन जैसी भावना जब हमारे अंदर व्यक्त होती है, प्रकट होती है, तब हम वास्तव में सही रूप से गुरु की शरण ले पाते हैं, जैसे अर्जुन ले रहे हैं। इससे पहले अभी तक अर्जुन कृष्ण के मित्र है ना, अर्जुन सखा है, तो अभी तक मित्र के रूप में बात कर रहे थे कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब वाद विवाद कर रहे हैं, ये मित्र के साथ हो सकता है। लेकिन अभी अर्जुन समझ रहे हैं कि ऐसे वाद विवाद करने से समाधान नहीं होने वाला, मैं सब बोल रहा हूं, तर्क दे रहा हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि ये सब तर्क बेकार है, ये सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, पूरी तरह से मैं कंफ्यूज्ड हूं। हाँ, तो इसीलिए अभी वो भगवान से कह रहे हैं, अभी मैं आपका मित्र नहीं, आपका शिष्य होना चाहता हूं, अभी मुझे आप अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और आप मेरे गुरु हैं। तो क्या योग्यता हम देखते हैं, तो अर्जुन ने कृष्ण से ये नहीं मांगा कि भगवान मैं कोई बहुत कष्ट में हूं, मुझे साम्राज्य मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं, साम्राज्य मिल भी जाए तो मैं सुखी नहीं हूं, और युद्ध नहीं करूं, ठीक है युद्ध नहीं करूंगा, मुझे लड़ना नहीं है, तो भी मैं सुखी नहीं हूंगा। अर्जुन ने केवल यह कह के छोड़ नहीं दिया कि भगवान मैं समझ गया हूं, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए और मैं इसमें संतुष्ट हूं, ठीक है, हरे कृष्ण, ऐसा नहीं बोले अर्जुन। अर्जुन बोले कि नहीं नहीं मैं जो बोल तो रहा हूं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो ना तो युद्ध करने से संतुष्ट होऊंगा और ना तो युद्ध न करने से संतुष्ट होऊंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से अभी, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस लिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, यही अज्ञानता मुझे खाए जा रही है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक मुझे समाज में, संसार में कुछ भी मिल जाए वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात आध्यात्मिक प्रगति पे वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो चेतना के इस स्तर पे पहुंच गया है कि ये भौतिक जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता, भौतिक जगत कि कुछ भी चीज मुझे सुखी नहीं कर सकती, मैं इससे परे हूं, ये भौतिक जगत का कोई भी चीज मुझे सुखी नहीं कर सकती। जब तक व्यक्ति इस निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए तब तक वास्तव में उसका भगवद गीता में इंटरेस्ट नहीं जगेगा, भगवद गीता को समझने की बुद्धि भी उसके अंदर नहीं होगी, वो ऊपरी तौर से पढ़ेगा लेकिन उसके हृदय में भगवद गीता के यथार्थ, उसके मर्म को हृदयांगन नहीं कर पाएगा। जब तक व्यक्ति का चेतना इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि वो समझ गया है कि ये सब जो भौतिक सुख है, भौतिक दुख है, ये दोनों ही बेकार है। भौतिक दुख तो दुख है ही, भौतिक दुख मतलब सामान्य रूप से, हम सामान्य रूप से क्या भौतिक दुख, किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास बीमारी है, पारिवारिक संबंध बिगड़े हैं, तो लालसाएं हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं, समाज में अराजकता बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद, फिर उधर ओजोन डिप्लीशन, ऐसे बहुत सारे कारण हैं अनगिनत, उसको कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। तो ये भौतिक दुख से तो हम दुखी होते ही हैं, लेकिन जो भौतिक सुख हैं जितना चाहे उतना पैसा, सब घर संपन्न, परिवारजन बिल्कुल सब अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, अच्छा हमारा जीवन चल रहा है, अच्छा व्यवसाय इत्यादि है, कंफर्टेबल लाइफ, ये भी दुख है। जब ये हम समझ लें कि दुख तो दुख है ही, भौतिक सुख भी दुख है, तब आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन को समझना मुश्किल रहता है सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि दुख तो दुख लगता है लेकिन सुख कैसे दुख है ये समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि मेरा जो दुख है, मेरी जो असंतुष्टि है हृदय के अंदर, उसका कारण है कि कुछ चीज़ जो मुझे चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रही हैं, या तो इस तरह से मैं उसको प्राप्त कर लूंगा तो शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, तो एक कहानी है छोटी सी। एक आदमी एक बार एक बहुत गहरे जंगल में गिर गया और जंगल चारों ओर से बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, यानी एक बार उसमें जो गिर गया उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था। और जब वो अंदर गिरा तो उसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे जो बड़े भूखे थे आदमी को खाने के लिए, मांस के लिए। जैसे ही वो देखा उन्होंने कि एक आदमी आज आ गया है, वो सब जंगली जानवर उसके पीछे भागने लगे उसको पकड़ने के लिए। तो वो आदमी बड़ा देख करके कि सब ये जंगली जानवर मेरे पीछे हैं, आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत हुई होगी, पसीना पसीना हो गया, बहुत बुरी तरह से भागने लगा लथड़ पथड़, और भागते भागते ना आगे के देख पा था ना पीछे देख पा रहा था, और ऐसे भागते भागते एक बड़े से खाई में गिरने लगा। और जब खाई में गिरने लगा तो गिरते गिरते ऐसे जब गिर रहा था हताश होकर के, तो उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और उस टहनी से वो झूलने लगा। अकस्मात उसके हाथ में वो टहनी आ गई, उससे झूलने लगा, उसको बहुत सांस आया कि चलो नीचे गिरने से बच गया। लेकिन अभी उसने नीचे देखा तो तलहटी में एक घड़ियाल वहाँ पर मुंह बाए खड़ा था उसके इंतज़ार में कि अभी ये नीचे आएगा तो ये मैं इसको खा जाऊँगा। तो बहुत भयभीत हो गया कि मैं बच गया, अभी नीचे गिर जाता। और फिर वो सब जो जंगली जानवर थे वो सब ऊपर चारों तरफ घेर लिए ऊपर से, क्योंकि वो तो उसका शिकार था, वो निकल गया। सब लोग इंतज़ार में थे, गुस्से में थे कि कैसे निकल गया। और वो पेड़ पर लटक रहा था तो लटकते लटकते उस देखा उसने कि वो जो टहनी है जिस पर लटका हुआ है उस पर दो विशिष्ट प्रकार के कुछ जीव हैं, एक सफ़ेद रंग का एक काले रंग का चूहे जैसे, जो धीरे धीरे उस टहनी को काट रहे हैं जिस पर वो टंगा हुआ है। तो पहले सफ़ेद वाला काटता है, फिर जब सफ़ेद वाला थक जाता है तो काले वाला काटता है, फिर जब काले वाला थक जाता है सफ़ेद वाला काटता है, ऐसे धीरे धीरे वो टहनी कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे वो टूटने जा रही है। तो उसे बहुत भय लग रहा है कि अभी टहनी टूटने जा रही है और नीचे घड़ियाल है। और इस बीच में जब वो गिर रहा था तो उस पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो जब वो गिर रहा था तो मधुमक्खी के छत्ते पे उसका हाथ लग गया और सब मधुमक्खियां पूरे गुस्से में उस आदमी के ऊपर झपट पड़ी और उसको काटने लगी। लेकिन अभी वो क्या कर सकता है, एक हाथ से पकड़े हुए है और बीच में झूल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मधुमक्खी काट रही है, उसको बड़ा कष्ट हो रहा है। मधुमक्खी काट रही है, आप सोच सकते हैं एक मधुमक्खी काटती तो कितना दर्द होता है। मधुमक्खी काट रही है, नीचे घड़ियाल है और नीचे मरने वाला है, टहनी टूटने वाली है, इतना सब कष्ट है चारों तरफ, कितना कष्ट है। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि वो जो मधुमक्खी का छत्ता टूटता है तो टूटने से वो मध निकलता है और वो उसकी जीभ पे आके टपकता है और वो टपकता है और फिर वो अगले बूंद की इंतजार करने लगता है कब दूसरी बूंद गिरेगी। और वो इंतजार में वो सब दुख भूल जाता है, मधुमक्खी के काटने का, नीचे घड़ियाल का, सब भूल जाता है, वो इंतजार करता रहता है कब दूसरा मत गिरेगा। तो ये हमारी स्थिति है कि हम लोग इस भौतिक जगत में, ये जेल में, गहरे जेल में आ गए हैं, जंगल में आ गए हैं, जिससे आ गए हैं लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। चाहो तो उससे बड़ा ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। ये भव बंधन से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना बड़ा मुश्किल है। और ये जो नीचे घड़ियाल है ये कौन है, ये मृत्यु है काल, जो अंत में वहां उसका शिकार बनना ही पड़ेगा। और ये जो टहनी काटने वाले दो जानवर हैं, ये दिन और रात हैं जो हमारी आयु धीरे धीरे कम कर रहे हैं और हमें घड़ियाल की तरफ भेज रहे हैं। और ये जो मधुमक्खियां हैं, ये दिन रात हर दिन होने वाली चिंताएं, स्ट्रेस, आज ये समस्या, आज ये समस्या, आज ये समस्या, आज ये समस्या, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब प्रॉब्लम्स हमें हर समय काटती रहती हैं। आध्यात्मिक क्लेश, बुद्धि और शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, और प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट जो हर समय में काट रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो इन सब कष्टों के बीच में वो मद क्या है, वो जो अगली बूंद गिरने वाली है, वो थोड़ा सा इंद्रिय सुख जो हमें मिल रहा है और अगली इंद्रिय सुख की तलाश की आशा कि बस अभी एक साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा, दो साल बाद ये हो जाएगा, चार साल बाद ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करते रहते हैं, दस साल बाद इतना, बीस साल बाद इतना, फिर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, तब तक इतना पैसा हो जाएगा, ये सब जो भविष्य की प्रोबेबल हमारी इंद्रिय भोग के चीजें हैं उसको सोच सोच के ही हम लोग ये सब दुख जैसे भूल जाते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य अभी अपनी चेतना के इस स्तर पे आ गया है, प्रगति करते हुए कुछ पूर्व जन्मों के अज्ञात सुकृति की वजह से साधु संघ में आकर के किसी भी तरीके से इस निष्कर्ष पे आ गया है, नहीं ये चाहे पूरा का पूरा मद मैं पी जाऊं तब भी मैं सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी मुझे इंद्रिय सुख मिल जाए, चाहे मुझे कोई भौतिक दुख नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत का बना हुआ नहीं हूं, मैं भौतिक नहीं हूं, इसलिए भौतिक सुख कैसे मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, ये जड़ है और मैं इनसे अलग हूं, ये सब नश्वर है, अंततः ये सब इनका अंत होगा सभी भौतिक सुखों का, और इनसे मिलने वाला भौतिक सुख का जो गुण है वो मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है वो अर्जुन की स्थिति में आ रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ भी मुझे भौतिक मिल जाए, चाहे देवताओं का साम्राज्य भी मिल जाए, तब भी मेरा जो ये शोक है ये दूर नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। वास्तव में वही व्यक्ति गुरु को पहचान सकता है जिसके अंदर ये योग्यता आई है, जिसके अंदर अभी भी आशा है कि नहीं भौतिक चीजें प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो सही गुरु को पहचान नहीं पाएगा और ढोंगी लोगों को गुरु बना लेगा। कैसे, उसे लगेगा अगर मेरी ये घर के अंदर अगर धन संपत्ति होती तो मैं संसार का सबसे सुखी आदमी होता, तो इसलिए मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे धन संपत्ति दिलवा दे, तो वो ऐसे गुरु को गुरु बना लेगा। किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ है शरीर की, तो वो सोचेगा अगर मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं संसार का सबसे सुखी आदमी हो जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस शरीर संतुष्ट। वो ये नहीं देख रहा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो भी बहुत दुखी। वो ये नहीं देख रहा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति कोई कमी नहीं है लेकिन वो भी दुखी। तो जिसके पास जो नहीं होता है वो वही सोचकर सोचता है बस इसी का अभाव है, ये हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो जिसको ऐसी दुराशा है, गलत आशा है, तो वो ऐसे गुरु को चयन कर लेता है, गुरु मान लेता है जो उसकी भौतिक इच्छा को पूरी कर लेता है और इस वजह से भ्रमित होता रहता है, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि गुरु उसने ऐसा चुना है जो खुद गुरु नहीं है, जो ढोंगी है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो आपको भवसागर से निकालने वाला नहीं है। आप तो भौतिक इच्छा मांगने गए और वो योगी हो सकता है, वो आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता है, वो आपकी बीमारी दूर कर सकता है, आपको कुछ सोना दिखा सकता है, लेकिन भगवान को नहीं बता सकता, भगवान को नहीं दे सकता आपको। तो इसीलिए शिष्य की ये गुण होने चाहिए और गुरु का गुण ये होना चाहिए, जैसा हमने चार दिन के अपने कोर्स में देखा था, षट कर्म विपुणो निप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो शपचो गुरु। कोई मंत्र तंत्र में बड़ा पारंगत हो, बड़ा पंडित हो, शास्त्रों में बड़े कुल में जन्म लिया हो, योगी हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, यदि वो भौतिक जगत में रचा पसा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो इसीलिए अर्जुन यहां पर किसे गुरु स्वीकार किए हैं, श्री कृष्ण को स्वीकार किए हैं, किसी भी और अन्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं किए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है हम सोचें ठीक है हमें भी गुरु बनाना है, पड़ोसी ने भी गुरु बना लिया, इसने भी गुरु बना लिया, इसने भी गुरु बना लिया, हम ही रह गए बिना गुरु के, हम भी गुरु बना लेते हैं। अच्छा आपने किसको गुरु बनाया, उसको बनाया, अच्छा कितने, बहुत सारे चले हैं उनके, अच्छा अरे बहुत नाम, ठीक है क्या करते हैं, बस उनको थोड़ा दक्षिणा दे दो, मंत्र देते हैं और मंत्र को दो तो आपकी जितनी भी भौतिक चीजें हैं सब बीमारी ठीक हो जाती हैं, अच्छा बड़े अच्छे गुरु हैं हम भी बना लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग सामान्यतया लोग गुरु बना लेते हैं, जैसे सब्जी मार्केट में हम लोग सब्जी खरीदते हैं ऐसे ही गुरु खरीद लेते हैं। तो गुरु ऐसे खरीदने का विषय नहीं है, गुरु मतलब गंभीर भारी, ऐसे हल्के गुरु नहीं होते हैं। गुरु मतलब अगर हम भगवत भगवान को समझने के लिए इच्छुक हैं, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ही वास्तविक गुरु हमें स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि वास्तविक गुरु का एक ही मात्र कार्य होता है शिष्य को भगवत धाम ले जाना, भगवान के विषय में यथारूप ज्ञान देना, उसे प्रशिक्षित करना भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए, इस भौतिक भव सागर से निकलकर भगवत धाम कैसे जाया जाए, ये प्रशिक्षण देता है गुरु। गुरु का और कोई काम नहीं, गुरु का काम नहीं है हमारी भौतिक चीज दूर करना। अगर बीमारी दूर करनी है वो काम किसका है, वो डॉक्टर का काम है, उसके लिए हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आध्यात्मिक गुरु का वो काम नहीं है। आपको पैसा चाहिए, आप किसी व्यापारी के पास जाइए, उससे सीखिए व्यापार कैसे करना है। सबके ये सब अलग अलग गुरु हैं, बिजनेस गुरु अलग अलग गुरु होते हैं ना, दिस गुरु दैट गुरु, तो वो ठीक है, वो सब गुरु दूसरे गुरु हैं, लेकिन कृष्ण वैसे गुरु नहीं है। ऑफकोर्स भगवान कृष्ण हमें सब चीजों की जानकारी दे रहे हैं, इस भौतिक जगत में कैसे आर्थिक व्यवस्था कैसे चलानी सब व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट है, वो मुख्य कार्य नहीं है। भगवान जो भगवद्गीता में संदेश अर्जुन को दिए, वो संदेश किस लिए था, कि अर्जुन जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और धर्म क्या है, वास्तविकता क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो और कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया, कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि इस ज्ञान को जानकर तुम निश्चित रूप से मेरे धाम आओगे, यद गत्वान अनिवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो मेरा धाम जहां जाने के बाद तुम्हें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिससे कि अर्जुन इसी भौतिक जगत में कंफर्टेबल हो जाए। सामान्य रूप से जो तथाकथित गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, कैसे इस भौतिक जगत में आप कंफर्टेबल होना है, लेकिन भगवान क्या बोले हैं, इस भौतिक जगत में आप कंफर्टेबल रह नहीं सकते हो। ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो सही गुरु कभी भी हमको ये नहीं बताएगा हाँ चिंता मत करो ये मंत्र जपो तुम यहीं कंफर्टेबल हो जाओगे, नहीं, सही गुरु बताएगा कि आप ये भौतिक जगत के निवासी नहीं हो, ये जेल है, इसलिए आप यहां कंफर्टेबल होने की मत सोचो, यहां आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आप बीमार अवस्था में हो, आप अपने को भगवान से अलग भोक्ता सोच रहे हो जबकि आप भगवान के दास हो। इसलिए यदि आप वास्तव में सुख शांति चाहते हो तो आप समझो कि आप भगवान के दास हो और भगवान की सेवा शुरू करो और तदुपरांत भगवत धाम जाओ, ये है सही गुरु के लक्षण। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। अभी जैसे ही भगवान की शरण ली अर्जुन ने, तो भगवान अभी तक जो मित्र रूप में बात कर रहे थे आज तक मैत्र शाखा भाव में, अभी भगवान ने तुरंत गुरु का रोल स्वीकार कर लिया। उससे पहले गुरु का रोल स्वीकार नहीं किया जब तक अर्जुन तैयार नहीं था, सही शिष्य नहीं था, जब तक अर्जुन के अंदर, ऑफकोर्स अर्जुन हमेशा से भगवान के महान भक्त हैं, इस समय वर्तमान में योग माया शक्ति से हमारे लाभ के लिए वो भगवान की इच्छा से इस भ्रम में आए हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन हमारे जैसे हैं, लेकिन फिलहाल वो भगवान की इच्छा से एक भ्रम में आए हैं। तो जब अर्जुन ने उस भ्रम की स्थिति के बाद भगवान की शरण ली, तब भगवान ने गुरु का पद स्वीकार किया और तुरंत अर्जुन को डांटा, अशोच्यानन व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंती पंडिता। अर्जुन तुम पंडित जैसी बात कर रहे हो, लेकिन जो पंडित है वास्तव में वो नश्वर चीज के लिए शोक नहीं करता है, वो इस शरीर के मरने के लिए या इस शरीर के रहने के संबंध में संबंधित नहीं होता है। अशोच्यान अनवशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष गतासून अगतासून, जो जीवित है और जो मरा हुआ है उसके लिए शोक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जीव आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना तो कभी मरता है, और जो शरीर है वो तो हमेशा से ही जन्म लेता है और हमेशा से ही मरता है, इसीलिए वो ये देहांतरण के लिए शोक नहीं करता है। तो तुरंत उन्होंने अर्जुन को डांटा कि आप जो है पंडित जैसी बात कर रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ये सही क्या है, आप गलत प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो। न तो ये वाहम जातु नासम न चय मन जनादिपा, ये मैं तुम और ये सब राजा जो यहां एकत्रित हैं, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम, ना तो कभी ऐसा समय था कि जब मैं तुम और ये राजा नहीं थे, और ना तो कभी ऐसा कोई समय आएगा जब मैं तुम और ये राजा नहीं रहेंगे, यानी कि मैं भी अमर हूं तुम भी अमर हो और ये सब राजा भी अमर है, कोई मरने वाला नहीं है, आत्मा जो है वो मरता नहीं है। फिर भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये वो श्लोक है जो हमने आपको मल्टीमीडिया शो में दिखाया था। इसके अनुसार भगवान समझाते हैं कि जैसे इस जीवन में आत्मा बचपन के शरीर को छोड़कर के युवावस्था का शरीर प्राप्त करता है, युवावस्था का शरीर छोड़कर के वृद्धावस्था का शरीर प्राप्त करता है, उसी प्रकार से अंत में वृद्धावस्था का शरीर छोड़कर निश्चित रूप से वह कोई और देह प्राप्त करेगा। धीर पुरुष इस देहांतरण को देख करके विचलित नहीं होता है। ये बहुत मुख्य श्लोक है भगवद गीता का। हम सामान्य रूप से देहांतरण को देख करके विचलित हो जाते हैं। जब कोई भी देह से संबंधित कष्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब देह से संबंधित कोई सुख आता है तो हम सुखी हो जाते हैं। और हमारा पूरा जीवन कैलकुलेशन ये रहता है कि मेरा जीवन ऐसे नियोजित करूं कि उसमें शारीरिक सुख बढ़ते रहे और शारीरिक दुख कम होते रहे, यही हमारी कैलकुलेशन रहती है। तो इसीलिए हम जो है अधीर रहते हैं। जैसे ही शरीर को कुछ दुख आता है हम विचलित रहते हैं, अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, दुखी विचलित जाते हैं। और जब भौतिक अच्छे होते हैं, सुख मिलता है, तो बड़े बहुत सुख जाते हैं, कितना मजा आ रहा है लाइफ में, बहुत आनंद। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। धीर व्यक्ति शरीर से संबंधित सुख दुख में भाग नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। इसलिए शरीर का दुख उसका दुख नहीं है और शरीर का सुख उसका सुख नहीं है। ये तो एक केवल एक भ्रम है। जैसे हम सपने देखते हैं तो कभी अच्छा सपना देखते हैं, कभी बुरा सपना देखते हैं। जब बुरा सपना देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, रोने भी लगते हैं, सबको अनुभव है। और जब अच्छा सपना देखते हैं तो बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन जब जगते हैं तब क्या होता है, तुरंत अनुभव होता है ये सब बेकार था, जो सपने में अच्छा सपना देखा वो भी बेकार था, वो भी भ्रम था, और जो अच्छा सपना बुरा सपना देखा वो भी बेकार था। अगर मेरे पीछे कुछ शेर भाग रहा था सपने में, सपना टूटते ही कहाँ गया शेर, ओहो ये बैड ड्रीम था, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सपना था तो बेकार, जस्ट क्षणिक था। और कोई बहुत राजा बन गया कोई सपने में, सपना टूटते ही समझ आता है ओह सपने में राजा बन गया तो बेकार, अभी रियलिटी सामने आ गई, रियलिटी क्या है। तो उसी प्रकार से सबसे पहली शिक्षा जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, कि हमारा जो वास्तविक सुख और दुख है ये शरीर से संबंधित नहीं है, ये सब केवल क्षणिक है। क्योंकि शरीर वास्तव में क्षणिक है, वो हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि धीर बनो, उससे विचलित मत हो। तो फिर अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, मैं जान गया कि शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन फिर भी तो दुख तो होता है। अभी जब हमें चोट लगती है, अभी हम ये क्लास अटेंड कर लिए, अभी भगवान ना चाहे या नहीं हो, दुर्भाग्यवश यदि कुछ चोट लग जाए, कल दांत में दर्द होने लगे, तो हम में से कितने हैं कि जिनको अभी हम आज की क्लास अटेंड करने के बाद कल सुबह दर्द नहीं होगा, टूथेक नहीं होगा, दर्द तो होगा, सुनने के बाद भी जब चोट लगती है तो दर्द तो होगा। और उसी प्रकार से जब भौतिक सुख मिलेगा तो उसमें भी हम सुख का अनुभव करेंगे। तो फिर कैसे, जब तक हम इस देहात्म बुद्धि में हैं तब तक कैसे हम सुखी और दुखी हुए बिना रहें, ये प्रश्न अर्जुन के दिमाग में आया कि वास्तविकता तो ये है। तो जैसे आप देखते हैं गोला होता है ना कोपरा, तो जब कोपरा कच्चा होता है तो जो उसके अंदर का जो व्हाइट सब्सटेंस होता है सफेद, और जो बाहर का जो खोपड़ी उसकी होती है कोपरा, तो वो दोनों बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। अगर बाहर वाला टूटता है तो अंदर वाला भी टूट जाता है सफेद भाग, लेकिन जब वो पक जाता है तो क्या होता है, बाहर वाले को हम तोड़ के अंदर वाला पूरा का पूरा साबुत निकाल देते हैं, अभी दोनों का अलग हो गए, पृथक हो गए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसी प्रकार से तुम्हें पृथक हो जाना है शरीर से, शरीर के सुख दुख तुम्हारे सुख दुख नहीं है, उसे तुम अलग हो, ये समझो। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि वो तो सिद्ध अवस्था है, ठीक है, लेकिन अभी क्या करें, वर्तमान में तो हम शरीर से बिल्कुल बंधे हुए हैं, शरीर के दुख हमको दुखी करते हैं, सुख हमको सुखी करते हैं, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमारे को क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, मात्र स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगम पायिन अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। यस करेक्ट, जब तक ये शरीर से हमारा संबंध है, जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं, जब तक हम शुद्ध नहीं हुए हैं चेतना से, तब तक हमें ये भौतिक सुख और दुख आते जाते रहेंगे, ऐसे ही जैसे सर्दी और गर्मी आते जाते रहते हैं। शीतोष्ण सुख दुख दा, ये सुख और दुख कैसे हैं, भौतिक सुख और दुख कैसे हैं, शीत और गर्मी ऋतु के आने जाने जैसे। यानी कि जैसे गर्मी और सर्दी ऋतु का क्या है, एक चक्र होता है, हमेशा से सर्दी नहीं रहती, हमेशा से गर्मी नहीं रहती, थोड़ा समय सर्दी और थोड़ा समय गर्मी आती है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक सुख दुख है, ये हर एक के जीवन में थोड़ा समय दुख आएगा, थोड़ा समय सुख आएगा, थोड़ा समय सुख आएगा, थोड़ा समय दुख आएगा, ये दोनों मिश्रण चलता रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा से भौतिक दुखी दुखी में हो, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा भौतिक सुख मिलता है, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसे केवल भौतिक सुख सुख हो, उसे भी दुख आता है। तो किस चीज पर आधारित होता है ये भौतिक सुख दुख आना, किसी व्यक्ति को कितना भौतिक सुख मिलना है, कितना भौतिक दुख मिलना है इस जीवन में, तो उसके पूर्व समय में इस योनि में या तो उससे पहले की योनियों में जो उसके किए गए कार्य हैं, उसके परिणाम स्वरूप उसको एक प्रकार का एक अमाउंट भौतिक सुख मिलना है, एक भौतिक दुख मिलना है, वो उसको मिलना ही है। और वैसे भी ये तो भौतिक जगत अशाश्वतम और दुखालयम है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर किसी ना किसी रूप में हमें दुख आते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलता रहेगा। तो इसलिए भगवान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहां पर अर्जुन को दे रहे हैं कि अर्जुन ताम तितिक्षस्व भारत, उसे सहन करना सीखो। क्या सुख होगा दुख होगा इंकार नहीं है, होगा, लेकिन उससे विचलित होकर के आत्मा संबंधी जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा नियत कर्तव्य है, उसे मत रोको। तो यहां पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं, अभी गर्मी की ऋतु में बहुत गर्मी होती है, तो जो गृहिणी है तो उसका कार्य, उसका कर्तव्य क्या है, गृहिणी का घर में खाना बनाना, ये उनका कर्तव्य है। तो अभी गृहिणी ऐसा नहीं सोच सकती कि अभी तो मई का महीना है, किचन में बहुत गर्मी है, चलो खाना नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं सोचा जा सकता। कर्तव्य है तो चाहे गर्मी है उसको थोड़ा सहन करेंगे, हो सकता है थोड़ा एग्जॉस्ट फैन लगा लें, कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लें, लेकिन फिर भी कुछ तो दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करेंगे। उसी प्रकार से सर्दी ऋतु है, ठंड है, तो जो लोग सुसंस्कृत हैं वो जानते हैं कि सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए, तो वो सुबह उठते ही स्नान करेंगे, वो हिचकिचाएंगे नहीं, अभी सर्दियां हैं अभी स्नान नहीं करते, 10 बजे स्नान करेंगे, नहीं, ये कर्तव्य है, इसको करना है। अर्थात कर्तव्य करने के रास्ते में ये जो भौतिक सुख दुख जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आ रहे हैं, उससे विचलित होकर के अपना जो कर्तव्य है वो करना मत छोड़ो, वो करना मत छोड़ो। यहां पर अर्जुन क्या कर रहे थे, अर्जुन का कर्तव्य क्या था, यहां पर अर्जुन की रोल क्या है समाज के अंदर, क्षत्रिय का रोल है, तो अर्जुन का इस समय धर्म कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय व्रत का पालन करना, अर्थात आतताइयों को मारना, और सबसे इंपॉर्टेंट भगवान के आदेश का पालन करना। लेकिन अब अर्जुन विचार कर रहे हैं कि अरे मेरे को अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा तो इससे दुख होता है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, यस दुख होता है स्वजनों को मारने से, लेकिन क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा ये धर्म है, इसलिए उस दुख को सहन करो और मारो। यस यस अंडरस्टैंड, आपको दुख होगा लेकिन कोई बात नहीं, धर्म का पालन करने के लिए जो भी दुख का या सुख का होता है उसे सहन करो। ऐसे ही सुख में भी इतना प्रफुल्लित मत हो जाओ कि अपना कर्तव्य को छोड़ दो, नहीं, सुख और दुख दोनों में आप उसको सहन करते हुए अपना कर्तव्य को पालन करो। तो भगवत गीता के इस पहले अध्याय से ही भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमको समझा रहे हैं, कर्तव्य परायणता, जिसका धीरे धीरे आज समाज में लोप होता जा रहा है। सब लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, आज जगह जगह कौन से समय सब है, ह्यूमन राइट्स, दिस राइट दैट राइट, हमारे अधिकार हमारे अधिकार हमारे अधिकार। कभी हम देखते हैं हमारे कर्तव्य हमारे कर्तव्य हमारे कर्तव्य कर्तव्य के बारे में विचार विमर्श होता हुआ, हमारा क्या कर्तव्य, नहीं नहीं ये मेरा कर्तव्य है मुझे करना चाहिए, नहीं 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 आपका नहीं मेरा कर्तव्य है, ऐसी लड़ाई देखते हैं हम लोग। हम लड़ाई क्या देखते हैं, ये मेरा अधिकार है ये मेरा अधिकार है, अधिकारों की लड़ाई करते हैं, कर्तव्य की लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन भगवद गीता क्या ज्ञान देती है, हमें अपने कर्तव्य के बारे में सचेत होना चाहिए। यदि सब अपने अपने कर्तव्य के बारे में सचेत होंगे तो ऑटोमेटिकली सबका अपना अपना जो अधिकार है वो तो स्वयं मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो पाप करेंगे और उससे इस जन्म में भी दुख भोगेंगे, आने वाले जन्म में भी दुख भोगेंगे और भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे। इसलिए यहां पहले से ही अर्जुन जो है वो कोई आजकल का मॉडर्न एज व्यक्ति नहीं है जिसे कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं है, नहीं एक्चुअली वो क्षत्रिय बड़े ही अच्छे सुसंस्कृत समाज का व्यक्ति है। इसलिए आपने देखा कि जब अर्जुन ने तर्क वितर्क किया तो उसने तर्क रखे कि ये पाप होगा इसलिए मैं नहीं करूंगा, वो जिम्मेदार आदमी है, वो ऐसा नहीं है गैर जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान संदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य पालन करने में जो तुम्हारी ये ढील हो रही है, जो तुम्हें ये लगाव की वजह से तुम कर्तव्य करने में चूक रहे हो, इसे छोड़ो, इस कायरता को छोड़ो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुम आर्य हो, तुम अच्छे सुसंस्कृत परिवार के हो, आर्य समाज के, आर्य समाज मीन्स नॉट टूडेज आर्य समाज, आर्य मतलब एक शब्द, आर्य मतलब जो सुसंस्कृत है, जो वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं उन्हें आर्य भगवद्गीता भगवान यूज करते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन तुम ये कायरता मत दिखाओ। तो इसलिए तांतितिक्षस्व भारता, तो हमें सबको ये सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, सबको सोचना चाहिए मेरा कर्तव्य क्या है। तो अभी कर्तव्य उसे ही धर्म कहते हैं, उसका धर्म का एक अर्थ है कर्तव्य, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, हमारे लिए निर्दिष्ट कर्तव्य क्या है। तो हर व्यक्ति का समाज से संबंधित एक निर्दिष्ट कर्तव्य है और हर व्यक्ति का अल्टीमेटली क्योंकि हम सब आत्मा हैं इसलिए हम सबका भगवान के संबंध में एक कर्तव्य है। तो जैसा हमने चार सेशन में अपने डिस्कस किया कि वास्तव में हमारा मौलिक स्वरूप है कि हम भगवत धाम के वासी हैं जहां पर हमको ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, नहीं होता है, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है और उस आध्यात्मिक शरीर से हम भगवान जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जब हम वो सेवा को भूल जाते हैं, भगवान से विद्रोह करते हैं, तो हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है जो हमारी वर्तमान स्थिति है। और भौतिक जगत में आने के लिए, यहां पर अपनी भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए हमें भगवान प्रकृति के द्वारा एक शरीर देते हैं जिससे हम अपनी गलत इच्छाओं को भ्रम को पूरा कर सकें। तो शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इस कृत्रिम भोग के अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अभी जब हम वर्तमान इस जगत में हैं तो हमारी धर्म हमारे धर्म हमारे कर्तव्य दो स्तर पर होते हैं, एक आत्मा के स्तर पर और एक शरीर के स्तर पर। आध्यात्मिक जगत में हमारे कर्तव्य केवल एक स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर, क्योंकि वहां पर शरीर है ही नहीं, भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक देह, तो अर्थात वही आत्मा, आध्यात्मिक देह आत्मा इज वन वन थिंग नॉट टू थिंग्स। तो ये जो भौतिक जगत के अंदर जो शरीर संबंधी हमारे कर्तव्य हैं जिनको शास्त्रों में बताया गया है हर व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए क्या है, पुरुष के लिए क्या है, पुरुष में भी अलग अलग वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इस प्रकार से सन्यासी, इस प्रकार से सब अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग आश्रम हैं जिसके माध्यम से भगवान ने इस पूरे समाज को कैसे ये सुनियोजित तरीके से कार्य करे और धीरे धीरे समाज का हर वर्ग भगवान की तरफ चले, ऐसी भगवान ने व्यवस्था की है और इसीलिए सबको अलग अलग निर्दिष्ट कर्तव्य दिए हैं शास्त्र में, जिन सबका उल्लेख है कि ये गुण वाला व्यक्ति को ये काम करना चाहिए। बर्थ के अनुसार नहीं है जैसा हमने पहले ही बताया था, गुण कर्म विभाक्ष, अपने हम जब जन्म होता है तो पूर्व जन्म के अनुसार एक प्रकार के एक गुणों को धारण करके हम शरीर धारण करते हैं और फिर फर्दर एक ट्रेनिंग लेते हैं जन्म के बाद और अलग अलग संस्कारों से, जिससे हमारा एक प्रकार का कार्य निश्चित होता है। तो मेनली चार प्रकार के कार्य समाज में होते हैं, एक बुद्धि से किया यानी ब्राह्मण कार्य जिसमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान लेकर के लोगों को समझाना बताना जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि, और फिर शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद इत्यादि ये सब ज्ञान भी उसके अंदर आता है। फिर दूसरा क्षत्रिय जो बलिष्ठ होते हैं और शौर्य वाले होते हैं, वीर होते हैं, और वो समाज की रक्षा करते हैं आतताइयों से, क्योंकि समाज में हमेशा से ऐसे लोग होंगे जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, प्रजा को परेशान करेंगे, ऐसे लोग होंगे हमेशा, तो उनको उनसे लोगों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए क्षत्रिय वर्ग बाहु। तीसरा वैश्य वर्ग, जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए, जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक चीजें हैं उनको पैदा करते हैं, अनाज इत्यादि। और फिर चौथा वर्ग जो पैर के समान है भगवान के, जो सभी अन्य तीनों वर्गों की सेवा करके करता है। इस प्रकार से चारों वर्ण के अनुसार ये पूरा समाज सुचारू रूप से चलता है, ऑर्गेनाइज वे में प्रगति करता है, और वो कर्मों के अंदर निहित है यज्ञ करना, अर्थात अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करना, जिससे ये शरीर के कार्य जो होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में जब लगते हैं तो उससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है। तो ये है शरीर के संबंध में हम सबके नियत कर्तव्य जो हमें जानना चाहिए। फिर क्योंकि हम आत्मा हैं अभी भी और हमेशा, तो वो नित्य कार्य है जो आध्यात्मिक जगत में भी हम करते हैं और अभी भी करना है, वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्यादि 9 मुख्य है उसमें। भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना, उनके विषय में गुणगान करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, भगवान की पर्सनल सेवा, उनके मंदिर की सफाई करना, भगवान के लिए भोग अलग अलग व्यंजन बनाना, भगवान को अर्पित करना, भगवान का श्रृंगार करना, ये सब जो व्यक्तिगत भगवान की सब सेवाएं हैं वो करना, फिर वंदना करना, भगवान की वंदना, भगवान से प्रार्थना करना, और अंत में अपने को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित करना। तो ये वो कार्य हैं जो नित्य कार्य हैं, जो अभी भी करना है, अभी उनकी ट्रेनिंग लेना है, और फिर जब सिद्ध हो जाएंगे पूर्ण अवस्था में तब उनको शुद्ध रूप से कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के 2 स्तर पे कार्य हैं, शरीर के स्तर पे कार्य कर्तव्य और आत्मा के स्तर पे कार्य। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं कि अपने इस कर्तव्य के पालन में, दोनों कर्तव्य के पालन में तुम जो है ये सुख और दुख से विचलित होकर उस कार्य को करना बंद मत करो जैसा तुम कर रहे हो, वो गलत होगा, वही पाप है। अर्जुन कह रहे थे कि युद्ध करना पाप है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए युद्ध ना करना पाप है। धर्म चपि चावेक्ष, अगर तुम अपने धर्म को भी देखो तो तुम क्योंकि क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारे लिए जो धर्म युद्ध हो रहा है इस युद्ध को करना तुम्हारे लिए धर्म है। तो क्षत्रिय, जैसा हमने बताया, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय जो अपनी जो प्रजा को रक्षण प्रदान करे आघात से, उसे क्षत्रिय कहते हैं। तो आतताई, जैसे हमने बताया आतताई, पैसा छीन लेने वाले, मर्डर करने के लिए ट्राई करने वाले, पत्नी का हरण करने वाले, घर को आग लगाने वाले इत्यादि, जमीन हड़प लेने वाले, ऐसे ऐसे 6 मुख्य आतताई हैं। तो इस प्रकार के आतताइयों से समाज का रक्षण करना ये कर्तव्य है क्षत्रिय का। और अंततः क्षत्रिय कर्तव्य है कि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे प्रजा को देखना है कि हर व्यक्ति अपने अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है कि नहीं। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के कार्य कर रहा है कि नहीं, कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कार्य कर रहा है कि नहीं, कोई वैश्य है तो वैश्य कार्य कर रहा है कि नहीं, शूद्र शूद्र कार्य कर रहा है कि नहीं, और सब कोई ढिल्ला नहीं बैठे, कोई आलसी नहीं, कोई ठाली नहीं, नहीं, हर एक व्यक्ति को काम पे लगाया जाए उसकी नेचर के अनुसार, ये क्षत्रिय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसीलिए यहां पर अर्जुन के सामने आतताई खड़े हैं। तो ये भगवान की बड़ी योजना थी महाभारत युद्ध में, जब भगवान आते हैं तो उससे पहले पृथ्वी जो देवी हैं वो एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास जाती हैं, और फिर ब्रह्मा आगे उनकी जो प्रार्थना है उसको भगवान तक ले जाते हैं, क्षीर सागर में जो भगवान वास करते हैं, कि भूभार, कि भगवान ये पृथ्वी के ऊपर इतने सारे दुराचारी शासक आ गए हैं कि ये भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो पृथ्वी जो है वो भार अनुभव करती है जब इस पृथ्वी के ऊपर राक्षस की संख्या बढ़ती है, तो वो भूभार उस समय जो सभी बड़े बड़े राजा थे वो सब शिशुपाल और दुर्योधन जैसे शासक की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि पृथ्वी जो है वो भूभार महसूस कर रही थी, और वो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपया करके आए। तो भगवान का ये जो महाभारत युद्ध के पीछे उनकी योजना है कि सब जितने भी हैं सबको एक साथ एक जगह लाओ और खत्म एक साथ, ये भगवान की योजना है। इसलिए भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन अभी इस युद्ध में से तुम पांच पांडवों के अलावा कोई बच के नहीं जाने वाला, वो मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, अभी तुम्हें केवल निमित्त बनना है। तो ऑलरेडी भगवान की इसमें बड़ी प्लानिंग है। तो अभी अर्जुन इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं इसमें क्या धर्म है अधर्म है क्या है सबसे, लेकिन उसमें महान धर्म है क्योंकि भगवान के इस आयोजन से जितने भी दुराचारी हैं वो सब के सब उसमें खत्म हो जाएंगे, सब आतताई सब खत्म हो जाएंगे। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो धर्मराज हैं, जो पांडव हैं, जो धर्म के अनुसार संचालन कर सकते हैं, जो वास्तव में क्षत्रिय हैं, तो वो स्थापित होंगे पूरे पृथ्वी का संचालन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे पूरी प्रजा धीरे धीरे भगवान की तरफ चलेगी। तो इसलिए अर्जुन के लिए शोक का कोई विषय ही नहीं था, अर्जुन के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय था, जिसे अर्जुन बाद में महसूस करेंगे कि हाँ मुझे भगवान चांस दे रहे हैं अपने इस मिशन में कंट्रीब्यूट करने का। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बनो, टेक द क्रेडिट, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है, सैंक्शन हो गया है, आपको केवल जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कार्य करो एंड टेक द क्रेडिट। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम कर्तव्य समझ करके इसको करो और ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभी कोई सैनिक है, यदि वो अपने कमांडर के कहने पर दुश्मन के 100 लोगों को मार दे तो उसे पाप लगेगा, उसे क्या सरकार गुनाहगार घोषित करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना कर्तव्य निभाया है, वो एक कमांडर के डायरेक्शन में उसने गोली चलाई है। अभी वही सैनिक अपने घर पे आकर उसी बंदूक से अपने पड़ोसी को मार दे बिना किसी कमांडर के आदेश के, तो उसे जेल हो जाएगी और फांसी की सजा भी हो जाएगी। तो वो पूछ सकता है मैंने इसी राइफल से 100 लोगों को मारा, मुझे इनाम दिया, और इसी राइफल से मैंने एक आदमी को मारा, मुझे फांसी की सजा दी, क्यों? तो दोनों में अंतर क्या है कि जो पहला कार्य हुआ वो कर्तव्य हुआ, वो उसने जो उसका कर्तव्य है सैनिक का उसको निभाते हुए उसने गोली चलाई, इसलिए चाहे भले ही लोग मरे 100 लोग मरे लेकिन उसमें कोई गुनाह नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं लगा। जितने ज्यादा लोग मरते उतने ज्यादा अच्छा था, जितने ज्यादा दुश्मन मरे उतने अच्छा, लेकिन हायर अथॉरिटीज की सैंक्शन के बिना अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से एक आदमी को भी मारा उसका पाप लगा। तो ये सिद्धांत है जो यहां पर अर्ज इस द्वितीय अध्याय के पहले स्कंद से पहले खंड से हम लोग सीख रहे हैं कि धर्म का अनुशीलन करने के समय उसमें कोई पाप नहीं होता है, अगर हम भगवान की इच्छा को जान करके कार्य कर रहे हैं। और वो भगवान की इच्छा हम कैसे जानते हैं? शास्त्रों के द्वारा जानते हैं, और मुख्य रूप से भगवान के एक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में रह करके उस प्रतिनिधि के माध्यम से जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए तो अर्जुन कृष्ण को कृष्ण की शरण में आए, आप बताइए मैं कंफ्यूज हो गया हूं आप बताइए। तो उसी प्रकार से हर मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के प्रतिनिधि के अंडर में रहे, हर व्यक्ति को इस प्रकार से गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए। जो गुरु के संरक्षण में नहीं है तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्योंकि धर्म का विषय गुह्य धर्म ये बड़ा गुह्य है, ये बड़ा डीप है, इंट्रिकेट है, इसमें बहुत बार ऐसे अवसर आएंगे कि वो समझ नहीं पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गुह्य है। धर्मम तत्वम निहितम गुहायम, ये जो भगवान के महान भक्त हैं क्योंकि वो महान क्योंकि भगवान से बिल्कुल संबंधित हैं, उनके संरक्षण में हैं, इसलिए वो स्पष्टता जान सकते हैं कि हर स्थिति में किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे वी शुड ऑल बिकम पेट डॉग्स ऑफ कृष्णा। देखिए दो तरह के डॉग्स होते हैं, एक पेट डॉग एक स्ट्रीट डॉग। तो पेट डॉग होता है वो बड़ा अच्छी पोजीशन में रहता है, मालिक के साथ रहता है, अच्छा खाता है, उसका संरक्षण होता है। और जो स्ट्रीट डॉग होता है, जो पेट नहीं होता है, उसकी बड़ी बुरी हालत होती है, दुर्गति होती है। तो इसी प्रकार से हम सभी अभी वर्तमान में क्या हैं? स्ट्रीट डॉग हैं, हमारा कोई आश्रय नहीं है, कोई हमारा संरक्षण नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं? ये मेरा पैसा है ना बैंक बैलेंस, ये मेरा संरक्षण करेगा। अरे मेरा चाचा जो है MLA है, मेरे बच्चे जो हैं डॉक्टर है अमेरिका में, मेरी तो स्थिति बड़ी मजबूत है, मेरे पास तो, मैं तो सीए हूँ, मैं तो ये हूँ, लेकिन ये सब कैसे हैं? शास्त्र में बताया ये सब असत सैनिक है, नकली सैनिक है, नकली सैनिक। तो नकली सैनिक क्या होता है? सैनिक रहते हैं लेकिन जब युद्ध होता है तो भाग जाते हैं, असली नकली सैनिक बोलते हैं। जब काम पड़ता है तब भाग जाते हैं क्योंकि सैनिक नहीं है, डर जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सब जो संरक्षण है हमारे, पैसा संपत्ति और पोजीशन और बच्चे इत्यादि, वो सब असत सैन्य है। जब जीवन के ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जैसे अर्जुन, तब उस समय ये सब कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद भी तो हेल्पलेस है। तो जो खुद हेल्पलेस है, जो खुद डूब रहा है, वो दूसरे को क्या बचाएगा? तो इसीलिए हम सबको जरूरत है एक स्ट्रांग सपोर्ट की, एक ऐसी नाव की जरूरत है। हम सब इस भव सागर में बड़ी हेल्पलेस कंडीशन में डूब रहे हैं, हम सबको एक बड़ी स्ट्रांग नाव की जरूरत है जिसका एक कैप्टन बड़ा ही प्रशिक्षित हो, एक्सपर्ट, जो जानता हो कि नाव को कैसी डायरेक्शन में कहाँ ले आना है। ऐसी नाव में यदि हम बैठ गए तो भले ही भव सागर में है लेकिन निश्चित है अभी कैप्टन मिल गया है, नाव बढ़िया है, धीरे 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 तर जाएंगे। लेकिन जिसको नाव ही नहीं मिली है या नाव मिली लेकिन कैप्टन नहीं है, तो उसकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। इसीलिए ये मनुष्य शरीर शास्त्र में बताया गया है ये वो नाव की तरह से है जो बड़ी स्ट्रांग है भव सागर को पार करने के लिए। और एक सच्चा गुरु जो भगवान का सच्चा भक्त है, ऐसा यदि गुरु की संरक्षण ले लें, शरण ग्रहण कर लें, तो फिर हमें एक ऐसा कैप्टन मिल गया, वो कैप्टन की तरह से है जो एक्सपर्ट है हमारी नाव को भव सागर से तार करने के लिए, भगवान के चरणों में ले जाने के लिए। इसलिए उसे कहते हैं सनाथ। जिसे गुरु ऐसा मिल गया जो उनके संरक्षण में आ गया, अर्थात भगवान के संरक्षण में आ गया, वो पेट डॉग बन गया, सनाथ। नाउ ही इज हैविंग ए नाथ। अनाथ नहीं है, हम सब अनाथ हैं, कोई नाथ नहीं हमारा। भगवान है लेकिन हम तो बिछड़े हुए हैं, जैसे एक बच्चा है बिछड़ गया अपने माँ बाप से, अनाथ हो गया, पता ही नहीं कौन माँ बाप, भटक रहा है, ऐसे हम सब की स्थिति है। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं यू कम टू माई शेल्टर, मेरी शरण में आओ, नाथ सनाथ बनो, मैं तुम्हारा नाथ हूं। क्यों उसे भाग रहे हो, क्यों उसे छोड़ रहे हो, क्यों बिछड़ रहे हो, कम। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम जब मेरे संरक्षण में रहकर कार्य करोगे तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो पाप की, कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, केवल तुम आदेश के अनुसार अपने धर्म का अनुशीलन करो, दैट्स इट। तो इस प्रकार से हमने आज दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक पढ़ा। हमारी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ये एक हफ्ता जो मिलता है जाने के बाद में, जितना हम कवर करें और कम से कम ये प्रश्न जो दे रहे हैं उसके माध्यम से, इसमें हर एक प्रश्न में हम आपको लिखते हैं कि कौन से श्लोक का रेफरेंस है, कम से कम वो श्लोक तो आप जरूर पढ़ें। ये मुख्य मुख्य श्लोक हैं, सभी श्लोक मुख्य हैं लेकिन ये श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर थीम पूरा कंडेंस होकर के व्यक्त किया गया है। तो आप इन श्लोकों को पढ़ें, मनन करें, जितना अधिक आप पढ़ पाएंगे उतना ही अच्छा से आप भगवद गीता को समझ पाएंगे, उतना ही अच्छा आप अपने जीवन अनुशीलन कर पाएंगे और उतना ही अच्छा आपका जीवन हो जाएगा। हरे कृष्णा। अभी इस संबंध में आपका किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी,
माया जो है हमारे आसपास वो भी भगवान का ही काम है,
भगवान की ही वो एक शक्ति है।
अगर भगवान हमें भूलने की शक्ति न देते तो हम सुख और दुख से मुक्त हो जाते।
ठीक है, अभी पुलिस एक कैदी को पकड़े हुए और कैदी कह रहा है ये पुलिस किसकी है, सरकार की है। यदि ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं होता तो फिर ये सजा नहीं मिलती, ठीक है ना? अगर पुलिस नहीं होती तो सजा नहीं मिलती, सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पुलिस तो उसकी नहीं है, पुलिस तो सरकार की है, सही बात है, पुलिस उसकी नहीं है। तो पुलिस यदि किसी आदमी का घर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल एडजेसेंट है, दीवार से दीवार लगी हुई है पुलिस स्टेशन की और उसके घर की, अगर वो आदमी सच्चा है, वो कोई गुनाह नहीं करता है, तो उसे पुलिस पकड़ती नहीं पकड़ती? उसे पुलिस से कोई डर भी होता है? भले ही उसका घर बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास में है तो भी उसे कोई डर नहीं है। लेकिन डर किसे होता है पुलिस का? चाहे भले कहीं भी रह रहा हो लेकिन गुनाह करता है उसे पुलिस पकड़ती है। तो माया हमको नहीं पकड़ती है, हम माया को पकड़ते हैं। माया हमको नहीं पकड़ते, भगवान जबरदस्ती नहीं हमको भेज दी माया को, जाके उसको भगवान क्यों पड़ी, भगवान तो हमको चाहते हैं कि हम माया में नहीं, तो भगवान की इच्छा से माया में हम नहीं आए हैं। हम चाहते हैं भगवान से दूर जाना, गुनाह करते हैं हम, कि भगवान हमें आप नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। अब ये स्वतंत्रता कैसे संभव है जीव के लिए? आप सोचिए, जब सब कुछ भगवान भगवान ही और भगवान की संपत्ति है, तो भगवान से स्वतंत्र होना कैसे संभव है? ये पागलपन है जीव का ना, जो संभव नहीं है उसको मांग रहे हैं, भगवान मैं आपसे स्वतंत्र होना चाहता हूं। भगवान से स्वतंत्र होना संभव नहीं है, भगवान और भगवान की शक्तियां सब कुछ है, उसे स्वतंत्र होना मीन्स जो भी एग्जिस्ट करता है वो भगवान, उनकी शक्तियां हैं, तो उनसे स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? लेकिन जीव हट लगाए हुए, नहीं 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 मुझे और स्वतंत्र होना है। तो अभी जब हम कोई चीज भ्रमित चीज पाने की कोशिश करते हैं, तो वो कब संभव होती है? जब हम एक भ्रमित भ्रम में ला दिया जाए। ठीक है, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो ये मेरी माया शक्ति है जो आपको ऐसे भ्रम में डालेगी कि आप स्वतंत्र हो गए। तो इसलिए इस प्रकार से आप अपनी इन गलत जो भ्रमित इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का ट्राई करो, क्योंकि यदि हम अड़े हुए हैं, हम अड़िग हैं, नहीं स्टब बॉर्न है, नहीं मुझे तो ये अलग होना ही आपसे, नहीं मुझे स्वतंत्र होना ही है, समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, नहीं स्वतंत्र होना ही स्वतंत्र होना, तो अभी कैसे समझाया जाए उसको? भगवान जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि हम सबकी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारा संबंध भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, और वो जीव का लक्षण है स्वतंत्र होना। जीव रोबोट नहीं है, भगवान रोबोट्स के साथ नहीं खेलते, रोबोट के साथ खेलने से आनंद नहीं आता है। तो इसलिए भगवान वो हमारी जो थोड़ी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो इसलिए भगवान समझाते हैं। लेकिन जब हम अड़े हुए हैं, नहीं 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 हमें तो स्वतंत्र होना ही, तो फिर भगवान कृपावश अपनी माया शक्ति के द्वारा वो संभव बनाते हैं जो असंभव है, इसलिए उसको माया कहते हैं। संभव तो नहीं होता, फिर भी जो जीव रहता तो भगवान के अंडर में ही है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी स्वतंत्र हो गया, तो इसलिए भगवान की कृपा है। नहीं तो हम ऐसे ही रोते रहेंगे और सेवा भी नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, कुछ उपाय नहीं होगा। ठीक है, कम से कम तुम्हारी जो गलत इच्छा है उसको पूरा करके देख लो और फिर समझो कि गलत है, फिर वापस आओ। तो ये सुधारने की भगवान की योजना है जीव को। हाँ जी,
सामाजिक कर्तव्य जो है उसके बारे में आज आपने जो बताया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काफी ऐसी चीजें आती है जो हमारी अपूर्ण ज्ञान अपूर्ण उसी की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाते।
हाँ जी,
कि ये सही है गलत है।
हाँ जी,
कर्तव्य जो है, कर्म जो है, हाँ, सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं, तो वो कई बार अनोइंगली भी गलत होता है, नोइंगली भी गलत होता है। वो सही में जो कर्तव्य है वो शास्त्रों के मुताबिक कौन से कर्तव्य जो है, जो उसके जो बेसिक कुछ मूलभूत भी है, उसके पथ पर भी हम चल सके?
यस, तो इसलिए मैंने आपसे पहले, आप ये समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए हर व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है सबसे पहले, तो क्योंकि धर्म की गहराई को सही समझने के लिए हमें एक निष्णात की जरूरत है। ठीक है, वो निष्णात है गुरु सबसे पहले बात। अगर गुरु हो गया तो आपकी चिंता खत्म, जहां आपको कंफ्यूजन हुआ गुरु जी से पूछिए क्या सही क्या गलत है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब आप प्रशिक्षण लेंगे तो सामान्य धीरे आप समझ जाएंगे कि ये धर्म है, यह धर्म है, उससे सुनेंगे कोई गुरु से, और जहां कहीं डाउट हुआ वहां पर गुरु जी हैं पूछने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरी है, लेकिन सामान्य रूप से ये शरीर का यापन करना होता है, इसका टिकाना होता है शरीर को, क्योंकि शरीर टिकेगा तो हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तो शरीर को टिकाना होता है बाई ऑथराइज मीन्स, किस किस तरीके शरीर को टिकाना है वो भी भगवान ने बताया है, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। तो अनैतिक तरीके से शरीर को टिकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो चीज मोरालिटी के विरुद्ध है उससे, तो वो तब करते हैं जब हम अपने शरीर को टिकाने की जगह अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब हमें अनफेयर मीन्स का सहारा लेना पड़ता है। तो लेकिन अगर हमारी इच्छाएं संकुचित हैं शरीर यापन के लिए हैं, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आज का समाज ऐसा हमने बना दिया है कि चाहे कोई सिंपल भी रहना चाहे तो भी उसको सिंपल नहीं रह सकता है, और उसको कुकर में फंसना ही पड़ता है, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इसलिए धीरे धीरे हमें ऐसा समाज का गठन करना चाहिए जो कि भगवान के निर्देश के अनुसार गठित हो, वो भी एक आय की बात है। तो इस प्रकार से शरीर यापन करना है, तो अगर आप मान लीजिए कोई भी व्यवसाय में है तो उस व्यवसाय को कीजिए, उसके फलों को आप भगवान को समर्पित कीजिए, और प्रसाद रूप में जितना आपके परिवार पालन के लिए आवश्यक है उतना उसको ग्रहण कीजिए, और जितना आवश्यक है, जो अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, उसे भगवान की सेवा में लगाइए, उनके गुणगान में लगाइए, और इस प्रकार से अपने परिवार का पालन कीजिए, और हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, ये पुस्तकें पढ़िए, भक्तों के संग में सुनिए, और अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा में आप जैसे सीखेंगे वैसे सेवा शुरू कीजिए। तो इट्स सिंपल ऑल्सो। हाँ जी, परमात्मा की अपनी देह आध्यात्मिक, दैट इज ऑल्सो सेम। भगवान मतलब उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक इंद्रिया है, वो भगवान है। आत्मा यानी जिसका आध्यात्मिक स्वरूप है वो आत्मा है, ऐसे ही भगवान है। जैसे ही मैं शरीर, आप शरीर, अभी शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन अगर शरीर के अंदर वही आप, वही सब कुछ मिला करके दैट होल थिंग इज कॉल्ड आत्मा, और वही होल थिंग इज कॉल्ड परमात्मा, लाइक दैट टू पर्सनैलिटीज। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। आप आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ जो तत्वदर्शी हो, जिसने तत्व का दर्शन किया हो। तत्व मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसने परम सत्य का दर्शन किया हो, ऐसे व्यक्ति की शरण में आप जाओ। तो निश्चित रूप से गुरु मतलब जिसने भगवान को देखा हो। लेकिन जब हम कहते हैं भगवान को देखा हो, तो आपको उसका मतलब भी समझना पड़ेगा। देखने का दर्शन जड़ नेत्रों से दर्शन नहीं होता है, जड़ इंद्रियों से भगवान की अनुभूति नहीं होती है। भगवान का दर्शन दिव्य नेत्रों से होता है, और भगवान की अनुभूति दिव्य इंद्रियों से होती है। तो जब हम कहें कि क्या हमें भगवान का दर्शन हुआ है, तो सेल्फ रियलाइज सोल, आत्म साक्षात्कार जिसने किया है, अर्थात जो भगवान की सेवा में सम्यक रूप से लगा हुआ है, और उस अपनी नेचुरल स्थिति में वो स्थित है भगवान की सेवा में, और इस प्रकार से सेवा के माध्यम से भगवान को परसीव कर रहा है, भगवान की प्रेजेंस को सभी इंद्रियों से धीरे धीरे, उसके अंदर आध्यात्मिक देखना भी आता है, और सब प्रकार की इंद्रियों से आदान प्रदान होता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु मतलब, हम गुरु से पूछेंगे कि गुरु जी आपने भगवान को देखा है, रोते बोले हाँ एक बार रात को सोते समय एक आदमी दिखा मेरे को, उसने मुरली धारण की हुई थी, हाँ, और फिर सिगार है मुंह में, तो मैंने देखा है 5 साल पहले देखा है। इसका मतलब उसने क्या देखा है? अगर भगवान का ऐसे उसने दर्शन किया और अभी भी सिगार पी रहा है, तो इसने भगवान को नहीं, भगवान के की जगह किसी भूत को देखा है। यस, एक्चुअली भूत भी इस प्रकार से भगवान का रूप धारण करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे हमें नहीं करना चाहिए। अभी हम कह रहे हैं किसी गुरु से, आपने भगवान को देखा है, तो अगर गुरु ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, आपको कैसे पता लगेगा कि उसे देख, अगर गुरु हाँ बोल दे हाँ देखा है, तो आप मान लेंगे देखा है, आपको उससे कैसे पता लगेगा देखा है? तो देखने का तरीका, जानने का तरीका क्या है कि किसी ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है? यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न है दिन रात, जिसे और कोई इच्छा ही नहीं रह गई, तो कैसे संभव है? यदि वो भगवान के साथ सेवा करके दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा है, तभी तो संभव है कि वो अन्य किसी इच्छाओं को सबको छोड़कर केवल भगवान की सेवा परम आनंद में है। दैट मीन्स ही इज विद गॉड, ही इज डायरेक्टली इन यूनियन विद गॉड, वो साक्षात्कार कर रहा है भगवान का। तो इसलिए साक्षात्कार का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुरु शिष्य परंपरा में आया हो, जो शास्त्र के अनुसार ज्ञान दे रहा हो, अनुशीलन कर रहा हो, और पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार बताए तरीके से, पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा बताए तरीके से भगवान की सेवा में बिना किसी हेतु के लगाओ, बिना किसी भौतिक हेतु के लगाओ। इसका मतलब उसने वो भगवान को देखा नहीं, देख रहा है, हर क्षण देख रहा है। हाँ जी, आप कक्षा के प्रारंभ से थे? नहीं, अच्छा, तो एक्चुअली हमने कक्षा के प्रारंभ में ही डिस्कस किया कि सुख क्या है और दुख क्या है। तो ये तो दुख का ही घर है, तो इसमें सुख तो कैसे होगा, तो दुखी होगा। अगर कोई आदमी सोचा है कि वो सुख है, तो वो भ्रम में है, सुख नहीं है। वास्तविक सुख है भगवान, ये इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है। ये जो शरीर से मिलने वाला सुख है, ये शरीर का सुख है, ये आत्मा का सुख नहीं है, और हम आत्मा एवं शरीर नहीं है। इसलिए वास्तव में हम जो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सुख मिल रहा है वो भी थोड़ा सुख नहीं मिल रहा, और जो हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा दुख मिल रहा है तो वो भी वास्तव में वो भी दुख नहीं है। यानी एक तरीके से कहें तो दोनों ही दुख हैं, क्योंकि आत्मा के दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही दुख हैं। इसीलिए हमें समझना होगा कि हम भगवान को जब छोड़ दिए हैं, बिछुड़ गए हैं, वही दुख है। और सुख क्या है? भगवान के साथ जो अपना संबंध हम खो दिए हैं उसको पुनर्स्थापित करना, वही सुख है। तो इसीलिए जब आपका प्रश्न है कि जीव कैसे जो बहुत सुख की इच्छा करता है, ये सही बात है, हम सबके अंदर सुखी रहने की इच्छा, वो सही है, आनंदमय अभ्यासा वो जीव का गुण है, वो सही है। तो कैसे वो मिलेगा? जब हम समझेंगे कि हमारा वास्तविक सुख है भगवान की सेवा, जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे, उनके सेवक बनेंगे, और उस दिव्य सेवा से आध्यात्मिक आनंद अनुभव करेंगे, वो वास्तविक सुख है और वो निरंतर है, अनंत है, उसका अंत नहीं होगा, वो थोड़ा नहीं, वो परफेक्ट हमेशा रहने वाला सुख होगा। तो जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत में सो कॉल्ड सुख, वो सुख नहीं है, इट्स ऑल इल्यूजन। दुख भी इल्यूजन, सुख भी इल्यूजन, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज दुख। और कोई प्रश्न है? ओके, हाँ जी। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो उनका प्रश्न है कि आज के समय में गुरु मुश्किल है, गुरु आध्यात्मिक गुरु, गुरु मुश्किल उस व्यक्ति के लिए है जिसकी आंखें नहीं है गुरु को पहचानने की। वो आज भी उतना ही मुश्किल है जितना दुर्योधन के समय मुश्किल था, जितना हिरण्यकशिपु के समय मुश्किल था, उतना ही मुश्किल वो आज भी है। और आसान उसके लिए उतना ही है जो आंखों से, जो जानता है गुरु को पहचानने, जो तैयार हो गया है गुरु को जानने के लिए, उनकी शरण लेने के लिए, वो पहचान सकता है गुरु को, उसके लिए गुरु उपस्थित है आज भी, हजार साल पहले भी, हजार साल आगे भी। क्योंकि गुरु का मिलना चांस नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट कि हम चल रहे थे जाते जाते अचानक मित्र मिल गया। तो ऐसे ही गुरु नहीं है कि हम जा रहे थे अचानक गुरु मिल गए, नहीं। ऐ ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए हम सब जो अनंत जीव हैं, तो भगवान की कृपा से जब हम योग्य होते हैं, तैयार होते हैं भगवान को जानने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए जब इच्छुक होते हैं, तब भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलता है। और फिर जब हम उस गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा के माध्यम से फिर हमें भगवान मिलते हैं। तो गुरु का मिलना एक्सीडेंट नहीं है, गुरु का मिलना भगवत कृपा है। यानी गुरु का मिलना मीन्स गुरु तो ऑलरेडी है ही, जहां भी एक व्यक्ति तैयार है भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए, वहां भगवान अपने उस भक्त को भेज देते हैं कि यहां स्टूडेंट तैयार है, गो एंड टीच हिम। जैसे ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज निकल गए, मुझे साम्राज्य चाहिए, सबसे बड़ा साम्राज्य चाहिए, लेकिन तो भगवान ने इच्छा की, देखो अभी उसे ये चीज चाहिए, नारद मुनि को भेजा, आप जाओ हेल्प हिम, उसको सिखाओ सही से। तो इस प्रकार से अगर हम इच्छुक हैं प्रबल रूप से कि मुझे अभी भगवान को समझना है, उनकी शरण में जाना है, ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, तो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमारे को जानते हैं सबसे अच्छा, तो वो हमारा संपर्क उस व्यक्ति से कराएंगे जो गुरु है। और क्योंकि हम अभी तैयार हैं, गुरु की खोज में हैं, गुरु को जानने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हैं, अभी हम उसको पहचान पाएंगे और उसकी शरण में जाएंगे। श्री प्रभुपाद तो बहुत लोगों के संपर्क में आए, लेकिन सब लोग तो उनको नहीं पहचान पाए कि ये गुरु हैं, उनके परिवारजन के लोग भी नहीं पहचान पाए, लेकिन जो तैयार थे वो उनकी बात सुनकर के पहचान गए, यस गुरु, लेट मी सरेंडर टू हिम। तो जैसे सोना है, तो आप चाहते हैं सोना, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, लेकिन जब तक आप जानते नहीं कि सोना कैसा होता है, कहाँ मिलता है, उसको कैसे परखना है, तब तक आप कैसे आपको सोना मिलेगा। लेकिन अगर आप परखना जानते हैं तो आप सोने को पहचान सकते हैं। तो उस प्रकार से भगवत कृपा से गुरु हमेशा से रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता है कि हम तैयार नहीं हैं। जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम पहचान पाएंगे, तब भगवान हमारा संपर्क कराएंगे, देन वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, यस करेक्ट, ही इज ए परफेक्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। ठीक है, आपका प्रश्न? ओके, फॉर द अदर्स, ओके थैंक्स। छलियों में छलिया हूं,
अगर तुम ढोंगी गुरु चाहते हो तो मतलब ढोंगी हो तो ढोंगी गुरु के पास भेजेंगे, अगर सिंसियर हो तो सही गुरु के पास
भेजेंगे। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि वेस्ट में कि प्रभुपाद जी ये वेस्ट में इतने सारे ढोंगी लोग क्यों आते हैं, इंडिया से बहुत सारे योगी आते हैं तथाकथित, सब लोग पैसा लेके ऐंठ के चले जाते हैं, क्यों ऐसे आते हैं? प्रभुपाद बोले इतने सारे चीटर्स क्यों आते हैं? प्रभुपाद बोले बिकॉज यू वॉन्ट टू बी चीटेड, देयरफॉर देयर आर सो मेनी चीटर्स कम बिकॉज यू वॉन्ट टू बी चीटेड। कि तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुमको भगवान के नाम पर कुछ सस्ता चीज चाहिए, तो ऐसे तुम्हें सस्ता चीज देने के लिए आते हैं। आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाहिए तो बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आपको केवल गोल्ड ही चाहिए तो फिर आपके परखेंगे और उसका मूल्य चुकाएंगे तो गोल्ड मिलेगा। हरे कृष्णा। अभी एक दो अनाउंसमेंट हैं। एक तो जो इस ग्रुप में हमारे इस भगवद्गीता कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो वो कृपया करके बाद में संपर्क करें हमारा टेबल के ऊपर। फिर हमने आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था कि आपके जो संबंधी हैं, पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, कि आप उन लोगों को प्रेरित करें। आप सब लोग कृपया कम से कम एक एक व्यक्ति को कि वो नेक्स्ट जो फरवरी में जो भगवद्गीता कोर्स हो रहा है 2 तारीख से, उसमें वो लोग आए। तो जैसे मैं आपको बताया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को प्रचारित करता है उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हम यदि निमित्त बन सकें एक व्यक्ति को ये भगवद्गीता के बारे में सुनने के लिए, तो उस प्रकार से आप भगवान की बड़ी महान सेवा करेंगे। भगवान की महान सेवा मतलब अपना उद्धार करेंगे। तो इसलिए कृपया करके प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगा, ये कोर्स अटेंड करके मुझे फायदा हुआ, तो आसान है, आप बोल सकते हैं अच्छा कोर्स है, आप जाके देखो, कोई नुकसान नहीं होने वाला। 4 दिन हैं, 1-2 घंटा सुनना है, सुनना है, और उसके बाद तो प्रसाद भी होना है, और इसलिए इज नो लॉस, इज नाइस, कीर्तन होगा, कुछ सुनने को मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं इज अ वेरी नाइस कोर्स, यू प्लीज अटेंड दिस कोर्स। निश्चित रूप से किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान सोचते हैं नहीं होगा, कुछ फायदा ही होगा, बहुत फायदा हो सकता है ना। तो इसलिए कृपया करके आप सभी लोग जिनको आप अपना प्रिय मानते हैं, जिनके बारे में जिनके आप शुभ चिंतक हैं, जिनका भला चाहते हैं, कम से कम उनको तो आप प्रेरित करें कि आइए इस कोर्स में अटेंड कीजिए। और फिर तीसरा अनाउंसमेंट कि जो कार्ड लास्ट टाइम आप लोग कुछ लोग नहीं आए थे, तो उनके कार्ड जो है आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं प्रसाद के बाद में, वो जो टेबल रहता है हमारा बुक टेबल, वहां से। तदुपरांत ये भगवद गीता जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आज भी हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे और उसमें फिर से ये श्लोक नंबर लिखा है, तो इसलिए कृपया करके जिनके पास ये भगवद्गीता यथारूप नहीं है, आप वो भगवद्गीता यथारूप लीजिए, वो आप पूरा जिंदगी, ये जिंदगी और आगे सब जिंदगी में वो काम आने वाली किताब है। तो कृपया करके ये प्रभुपाद की पुस्तक को लीजिए, पढ़िए उसको, उसके आधार पर ये प्रश्न भी हैं उसको भी सॉल्व कीजिए, लेके आइए।